शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप वर्ष 1969 में यह ईश्वरीय ज्ञान आपने प्राप्त किया, उस समय आप स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे। फिर 1972 में जब आपने मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम पास की, आपने यह जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया। आप गुजरात से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं और इसलिए आरंभ में सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि आदि स्थानों पर अपनी अमूल्य सेवाएं दी और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सबछोन इंचार्ज के रूप में आप सेवाएं करते रहे। फिर तो 1993 में कैंसरोर एकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, बाबा ने आपको वहां बिठाया। करीब 17 वर्षों तक वहां पर रहकर आपने वहां का रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि आदि बहुत ही सुचारू रूप से चलाया। फिर 2010-11 के आसपास जब शांतिवन में विस्तार हुआ सेवाओं का, बाबा ने आपको वहां बिठाया। तो वर्तमान में शांतिवन में स्थायी रूप से रहते हुए हेडक्वार्टर के सभी कैंपसेस में अपनी आप सेवाएं देते हैं। आप मुख्य रूप से राजयोग प्रशिक्षिका हैं, भट्टी की भी प्रशिक्षिका हैं, एसएमएल ट्रेनर हैं और साथ साथ जो हमारा बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। और इसीलिए न सिर्फ हेडक्वार्टर में लेकिन पूरे भारत भर में भी भ्रमण करके आप राज्योग शिविर कराते हैं, भट्टियां कराते हैं, एसएमएल ट्रेनिंग कराते हैं और बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम्स भी कराते हैं। इतना ही नहीं, 1985 में आपने भारत एकता युवा पदयात्रा का भी नेतृत्व करके अपनी लीडरशिप क्वालिटी का प्रमाण दिया। 1992 में इंडो नेपाल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में भी आपने पार्टिसिपेट किया और फिर 1996 में बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के द्वारा आयोजित कार रैली मुंबई, इंदौर, कोटा तक की, उसमें भी आपने अपनी विशेष सेवाएं दी। बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आप। मुरलियों का बहुत सुंदर मनन चिंतन करते हैं, उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं और वही सारे टिप्स सबके सामने रखकर सबको भी प्रेरित करते हैं कि कैसे हम बाबा की मुरलियों को जीवन में उतारें। तो आज बहुत सुंदर विषय को लेकर हमारे बीच में पधारे हैं दीदी, कर्म, अकर्म और विकर्म, इसकी क्या गति होती है हम सुनेंगे दीदी से। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। पांडव भवन की पावन भूमि, तपोभूमि, वरदानी भूमि में तपस्या करना अच्छा लग रहा है सबको? प्यारे बाप दादा की, मम्मा की, दादियों की कर्म भूमि ये रही है। यहां नेचुरल योगी हम बन सकते हैं। सहज याद, कोई मेहनत नहीं लगेगी। वहां तो आप सभी को ज्यादा समय नहीं होता है, अपना घर परिवार संभालना, नौकरी धंधा करना, तो रूटीन पुरुषार्थ कर सकते हैं। रोज का क्लास योग कर सकते हैं। इसलिए बाबा मधुबन घर में बुलाते हैं कि यहां टाइम निकाल करके आओ, सारे प्रबंध तैयार मिलेंगे, माताओं को भोजन बनाने की कोई चिंता नहीं, भाइयों को नौकरी धंधे पर जाने की कोई बात नहीं, सभी बातों से फारिग होकर यहां आए हैं, इसलिए कि हम खुद को ज्यादा समय दे सकें। बाबा की याद में रह सके। आज कितनी बार बाबा ने हम बच्चों को कहा, बस बाबा बाबा करते रहो, रटने की बात नहीं है, जपने की बात नहीं है, लगन बाबा से लगे रहे, बाबा की स्मृति बार बार आती रहे, तो अपने आप को यहां देखो, हमें बार बार बाबा याद आते हैं, हमारी लगन कहां लगी हुई है चेक करो, जहां लगन लगी होगी वो बार बार याद आएगा। दो दिन पहले की मुरली में था, ऐसी आतुर वेला लगे, आत्मा को बस अंदर उतावलापन आए कि बस अब वापस घर जाना है, तो चेक करो, बाबा ने कहा इसलिए वापस घर जाना है या लगन लगी है। कल्प के अंत का सीन महाविनाश का हो, यहां रहने में कोई फायदा नहीं, इसलिए बाबा हमें घर ले जाएंगे जहां हम अपनी शांति और पवित्रता की स्थिति में रहेंगे, नई दुनिया तैयार होगी, बाबा हमें नीचे भेजे, तो ऊपर जाना पसंद है सबको कि अंदर से मन नहीं है, बताओ हाँ, तैयार है ना सभी, क्योंकि यहां रहने में कोई फायदा नहीं है, महाविनाश कोई सामान्य चीज नहीं है, अच्छा है इतना समय घर में रिलैक्स होके रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे देखने के स्थान है दुनिया में, घूमने जाते हैं, परंतु कुछ समय के बाद इच्छा होती है ना कि अब पहले घर जाएंगे, बहुत घूमे फिरे अब घर जाना है,
फिर सेकंड राउंड में और स्थान देखेंगे, पर अब तो घर जाना है, ऐसा होता है ना? बहुत पार्ट प्ले कर लिया, सती उपत्रेता अपार सुख का पार्ट भी हम सभी ने बजाया। तो द्वापर कलियुग बाबा कहते हैं बहुत दुख की दुनिया भी देखी, तो अब आत्मा को लगन है कि बाबा के साथ घर जाना है। हिसाब किताब क्लियर कर जाना है, ऐसे नहीं जा सकेंगे। हमने इस दुनिया से जो लिया जो दिया वो हिसाब क्लियर करना है। संगम युग में वही पुरुषार्थ हम करते हैं। दो बड़ा कार्य, दो बड़ा पुरुषार्थ हमें करना है। 63 जन्मों के विकर्मों का बोझा उतारना है। और 21 जन्मों के लिए सत्कर्मों का जमा खाता बनाना है, है ना? सबका अटेंशन, 63 जन्मों के विकर्मों का हिसाब क्लियर करना। 21 जन्मों के लिए सत्कर्मों का खाता जमा करना। इसलिए आज बाबा ने कर्म गति की बात कही। आत्मा चैतन्य है, जैसे ही शरीर धारण करती है कर्म करना शुरू हो जाता है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, श्वास लेना, जीना, ये भी क्रियाएं हैं, ये प्राकृतिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे ही फिजिकल ऑर्गन्स मिलते हैं कर्म शुरू हो जाते हैं। तो कर्म हमें करने ही हैं, कर्म से कोई छूट नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते मुक्ति की बात नहीं, जिसको एक्शन अच्छा करना आते हैं वो एक्टर क्या सोचेगा, क्या सोचेगा? जिनमें बहुत अच्छी एक्शन करने की कला है वो कलाकार क्या सोचेगा? नाटक से निकल जाएं या हीरो एक्टर बने, क्या सोचेगा? द्वापर से हमारे कर्म बिगड़ गए क्योंकि योग कर्म से अलग हो गए। हम देह से अटैच हो गए, दुनिया से अटैच हो गए। कर्म से योग अलग हो गया तो विकर्म बनना शुरू हो गया। आत्मविस्मृत स्थिति देहभान में आए विकर्म होने लगे। हर कर्म विकर्म हुआ, विकारों के वशीभूत हुए पाप कर्म होना शुरू हो। इसलिए बाबा कहते हैं 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ चढ़ा हुआ है। आज बार बार बाबा ने बहुत अच्छी बात हमें समझाई कि अपने आप को भूलते हो, बाप को भूलते हो, तब मन मूंझता है, खुशी गायब होती, मीन्स कर्म राइट नहीं होता। ये तुरंत फल मिलता, मन मूंझना, कंफ्यूजन, खुशी नहीं। हम बाबा के बच्चों को बाबा ने आदि मध्यांत का ज्ञान दिया, आलोक परलोक का ज्ञान दिया, रचयिता रचना का ज्ञान दिया, सारे सनातन सत्यों का राज बाबा ने क्लियर किया। हमारे लिए अब मूंझने की कोई बात ही नहीं, हमारे लिए अब कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा अनुभव किस किस का है कि बाबा मुरली में छोटे से लेकर बड़ी हर बात समझाते हैं, हमारे लिए कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं। आप सबका अनुभव क्या है ना ऐसा? हाँ। कोई प्रश्न आया नहीं, कोई प्रॉब्लम आया नहीं, ज्ञान बुद्धि को जवाब देता है। हम मूंझ नहीं सकते, दुखी नहीं हो सकते, कितनी अच्छी बात है। हम दुखी हो नहीं सकते हैं क्योंकि ज्ञान बुद्धि में है, ज्ञान तुरंत जवाब देता है, समझाता है। इसलिए जितना अच्छी रीति मुरली का अध्ययन करेंगे, जितना ज्ञान गहरा होगा, कोई प्रश्न, कोई कंफ्यूजन होगा, कोई आश्चर्य चिन्ह नहीं आएगा। आश्चर्य की बात ही नहीं है, बाबा ने सब बता दिया। कई बार हमें आश्चर्य होता है ना, अरे ऐसा हुआ, ये पुराने ऐसे करते हैं, समर्पित ऐसे करते हैं, मधुबन वाले ऐसे करते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई आश्चर्य की बात ही नहीं। बाबा ने कहा सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, हर आत्मा का अपना अपना रोल है। हम इतनी ज्ञान से भरपूर आत्मा बने, हमें ये फल दुख के, कंफ्यूजन के, उदासी के चखने ही न पड़े। परिस्थिति तो आएगी, हमारे कर्मिक अकाउंट से परिस्थिति तो हमारे सामने आएगी। सब जानते हैं बिगर कारण कोई परिस्थिति आ नहीं सकती है। पहले दुखी होते थे क्योंकि दूसरों को दोषित समझते थे, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये मुझे विघ्न डाल रहे हैं, इनके कारण मैं आगे नहीं बढ़ रहे। हम दूसरों को दोषित समझते थे क्योंकि स्वदर्शन का अभ्यास ही नहीं था, खुद को देखते ही नहीं थे। अब ज्ञान आ गया, स्व में स्थित हो गए हैं, स्वदर्शन करते हैं, इस जन्म का या पूर्व जन्म का हमारा ही कोई कर्मिक हिसाब है, तभी ये परिस्थिति हमारे सामने आई। अब हमें हिम्मत से, धीरज से और योग बल से इस हिसाब को चुकाना। इसमें दूसरे पर नाराज होने की, गुस्से होने की बात ही नहीं। भाई यहां पर ही साइक्लोन क्यों आया? भाई वहां हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो चारों ओर की हवा वहां धस जाती। साइंटिफिकली हम समझते हैं। हमारे सामने भी कोई तूफान क्यों आया? जरूर हमारा जमा का खाता कमजोर है, माइनस का खाता ज्यादा है, इसलिए परिस्थिति है। भक्ति में खुद पुरुषार्थ नहीं करते थे, दूसरों को कहेंगे, ब्राह्मणों को, तुम इतने जाप जपो मेरे तरफ से, ये यज्ञ करो, ये दान करो। यहां बाबा ने बताया और कोई कारण नहीं है, हमारा अपना ही हिसाब के साथ। इसलिए हमें सत्कर्म का खाता पूरा जमा करना है। जीवन में कोई भी दुख है, अशांति है, बीमारी है, कोई अभाव है, कोई भी बात है, मेरे साथ ही क्यों है? मेरा हिसाब कितना है? कई बार हम सोचते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, औरों के साथ तो बहुत प्यार से बात करते हैं, खुशी से बात करते हैं, मेरे साथ ही बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? मैंने इतना अच्छा व्यवहार किया, इतनी पालना दी, इतना ये किया, फिर भी मेरे साथ ही बुरा व्यवहार क्यों करते? हमें ज्ञान स्वरूप बन के सोचना है, मेरे साथ ही क्यों करते हैं? मेरा हिसाब है। प्रश्न में ही उत्तर है, मेरे साथ ही क्यों करते हैं, यही बताता है कि मेरा हिसाब है उनके साथ। मेरा उनके साथ इतना जमा नहीं है, इसलिए मेरे अच्छे करने पर भी अभी भी खाता भरा नहीं है, इसलिए वो बुरा ही व्यवहार कर रहा है। तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम रिएक्ट करेंगे हमारा फिर और हिसाब बनेगा। अगर हम अपने कर्मिक खाते को क्लियर करना चाहते हैं, मुझे गलत व्यवहार नहीं करना, क्योंकि मुझे अब हिसाब बढ़ाने नहीं, अज्ञानता थी, अज्ञान काल में गलत किया, ज्ञान नहीं था। बाबा कहते विकारों में डुबके खाते रहे, विकर्म पाप कर्म करते रहे। पर अब तो ज्ञान है ना, अब तो भगवान से डायरेक्ट हम पढ़ रहे, रोज सत्य ज्ञान की पढ़ाई कर रहे। भाई कोई अनपढ़ ठीक व्यवहार ना करे तो लोग कहेंगे चलो भाई बेचारा अनपढ़ है, गंवार है, नहीं जानता है, नहीं समझता, लोग उनको माफ करेंगे। पर भाई तुम शिक्षित होके ऐसा व्यवहार करते, कहते हैं ना तुम तो पढ़े लिखे हो, आपके मुख से ऐसे अपशब्द कैसे निकले, आपने ऐसे कैसे व्यवहार किया, तो हम कौन है महसूस करना है, हम कौन है। हम सत्य ज्ञानी आत्माएं हैं, हमें सत्य ज्ञान मिला है, हम डायरेक्ट परमात्मा योगी आत्मा है। तो हमारे मन वचन कर्म कैसे होने चाहिए, हम कह नहीं सकते हैं कि मुझे पता नहीं, हमें हर बात पता है। भगवान ने एक बार नहीं, सैकड़ों बारी बार बार मूल सत्यों का ज्ञान हमें दिया, नए नए तरीके से, नए नए पॉइंट देकर के रोज बाबा हमें समझा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये संगम का समय है, जब खुद भगवान संपूर्ण सत्य ज्ञान हमें देते, इससे ज्यादा और कौन समझा सकता है, समझा सकता है हाँ? बाबा जैसा कोई समझा सकता है, इससे ज्यादा और कौन समझाएगा। हम अभी भी नहीं समझेंगे, अभी भी अटेंशन नहीं देंगे, हम अभी भी अपने कर्मों को ठीक नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसलिए बार बार आज बाबा ने कहा याद करो, स्मृति हर प्रकार की राइट स्मृति बाबा ने हमें दिलाई, हम अपने हर कर्म को सत्य बना सकते हैं। सुबह सुबह ज्ञान का खजाना बाबा हमें देता है, किस लिए, ताकि सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्मृति का खजाना मिल जाता है। आत्मभिमानी बनो। जिस क्षण बाबा को भूलते हैं, अपने आप को भूलते हैं, तब विकर्म होता है। बहुत सूक्ष्म गहरी बात बाबा ने आज बताई। अब नया कोई विकर्म ना हो, क्योंकि हम हिसाब क्लियर करना चाहते हैं। ये कल्प एंडिंग है, 84 जन्मों का हिसाब क्लियर करना। पूरा कल्प तो माइनस प्लस माइनस प्लस लिंगर ऑन होता रहा आगे हिसाब, पर जैसे मार्च एंडिंग में बैंक वाले क्लियर करते हैं ना कि बस आपका इतना जमा है, निकाला डाला अब इतना आपका है, बाबा कल्प का एंडिंग करते हैं। इसलिए हिसाब बनाने नहीं है, मुझे किसी से हिसाब बनाने नहीं है, इसलिए मुझे रिएक्ट नहीं करना। अपने स्वधर्म से विपरीत व्यवहार करना, वो रिएक्ट करना। हमारा स्वधर्म क्या है? शांति और पवित्रता, ये आत्मा के मूल गुण धर्म है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करो। आत्मभिमानी बन कर्म करो तो कर्म एक्यूरेट होगा, भूल नहीं होगी, गलती नहीं हो। इसलिए एक पुरुषार्थ है, मुझे नया विकर्म अब नहीं करना। ब्राह्मण आत्माएं हैं, अज्ञानी आत्माएं हैं, लौकिक परिवार की आत्माएं हैं, कोई भी आत्माएं, मुझे किसी से रिएक्ट नहीं करना, मुझे आत्म धर्म में स्थित होकर व्यवहार करना। ज्ञान नहीं था, लोग सोचते थे उसने दो बोला, मैं चार बोलूंगी। हमें इसमें पावरफुल नहीं बनना है, हमारा वो काम नहीं। वो नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता है भगवान आए हैं, उनको सत्य ज्ञान नहीं है, वो संगम के समय को नहीं जानते, पर मैं तो जानती हूं ना, मैं तो जानती हूं ना कौन आया है, कौन सा समय चल रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे तो पता है ना। वो ऐसे करते हैं इसलिए मैं ऐसे करता हूं, नहीं, मेरे व्यवहार का आधार मेरी अपनी आत्मस्थिति, उनके व्यवहार के आधार पर मुझे कर्म नहीं करने, वो रिएक्शन होगा विकर्मों का हिस्सा बने। बहुत ऊंचा सौभाग्य भगवान ने हमें दिया, तो हमारी इतनी ऊंची जिम्मेवारी भी है। इसलिए नया कोई पाप, नया कोई हिसाब मुझे नहीं बना। इतनी न्यारी और प्यारी स्थिति में रहे ताकि जल्दी प्रभाव में ना आवे, कर्म नहीं बिगाड़े। क्यों बाबा दसों बार रोज कहता है आत्मभिमानी बनो? क्योंकि हमें व्यक्ति, परिस्थिति, बातों के प्रभाव से न्यारा रहना। आत्मभिमानी स्थिति न्यारी स्थिति। दूसरी बात, अगर हमें अपने कर्मिक हिसाब किताब को हल्का करना है, क्योंकि ज्ञान मिल गया, अब हमें परख आ गई है, हमने जीवन में ज्ञान से पहले कौन से पाप किए हैं इस जन्म में। उस समय परख नहीं थी, विकारों के वश थे पाप किए, अब परख आ गई है। ज्ञान में आने के बाद भी गफलत में रहकर हमने कौन से पाप कर्म और विकर्म किए, बाबा कहते हैं, बाबा को सच्चाई से अपनी जीवन कहानी लिख के दे दो। आता है ना मुरली में, हाँ, बाबा से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पाप वृद्धि को पाएंगे। ये महावाक्य आते हैं ना मुरली में। इसलिए अगर हम सच्चे दिल से बाबा के बने, केवल बातें नहीं, बनावट नहीं, सच्चे दिल से हम बाबा के बने हैं, तो हमें बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं। बाबा कहते हैं, इस जन्म की जीवन कहानी, 3 वर्ष की आयु से बातें याद रहती है। ये बाबा ने मुरली में कहा। इसलिए ज्ञान से पहले या ज्ञान में आने के बाद, अज्ञान में या अब गफलत में, जो बड़ी भूलें, पाप, विकर्म, व्यर्थ कर्म हमने किए हैं, वो हम सच्चाई से बाबा को लिख के दे दें। मेरे जीवन की किताब बाबा के आगे खुली हो, बाबा से छिपाएंगे तो जब बाबा को याद करने बैठेंगे उस समय बार बार विकर्म याद आएगा, ये दंड मिलता है। योग लगेगा नहीं, बार बार टूटता रहे। इसलिए हम लोग तो दादियों को लिख के देते थे, बाबा के तरफ से दादियां निमित्त थी। अब परिवार बढ़ गया है, इसलिए हरेक के बातों में कहां जाएं, हरेक खुद अपनी जीवन कहानी सच्चाई से लिख के बाबा के कमरे में लेटर बॉक्स में डाले। ये बाबा के तरफ से स्पेशल ऑफर है, आधा माफ हो जाएगा। वैसे माफ नहीं होता है, हरेक को अपना चुकाना ही पड़ता है, पर ये ऑलमाइटी ऑथोरिटी स्वयं आई है तो उनकी ये ऑफर है कि आधा माफ हो जाए। इसलिए प्रैक्टिकल विकर्मों का बोझा उतारना है इस जन्म का, नहीं तो बार बार बुद्धि के स्क्रीन पर वो पाप के दृश्य आते रहे। सदा पावन बाबा से बुद्धि लगानी है तो कितनी शुद्धि चाहिए। और तब ये दो बातें मजबूत करेंगे तो इस प्रकार की हमें मदद मिलेगी। और तीसरी बात, जन्म जन्मांतर जो पाप कर्म किए उससे जो पतित संस्कार बने हैं, आदतें बनी हैं, टेंडेंसी बनी है, वो योग बल से उस विकर्मों को खत्म करना है। इसलिए तपस्या करनी है, हमें ये मौका है, नहीं तो दंड ही खाना पड़ता है। कर्मों की सजा पर हमारा ये भाग्य है, हमें भगवान मिले हैं, सत्य ज्ञान मिला है, हम योग से खुद को शुद्ध बनाए। बाबा की याद में खुद को रियलाइज कराए, ओरिजिनली मैं शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, ये मेरी ओरिजिनल नेचर है, मेरे में विकार कैसे आ सकते हैं। खुद को रियलाइज करें। आज बाबा ने कहा ना, याद करो मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं क्यों भूलता हूं, अभी भी मेरी बुद्धि कहां भटकती है, क्यों मुझे बाबा भूल जाते। खुद खुद को महसूस कराना, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरी ओरिजिनालिटी में कोई विकार नहीं है, मैं उनको संपूर्ण खत्म कर सकता, संस्कार आदत बदल सकता। इसलिए तपस्या चाहिए, अंतर्मुखी बनकर बाबा कहते हैं तपस्या की भट्टी में बैठो, पूरी एकाग्रता और दिल से बैठो, लगन लगाओ। उनको तो द्वापर कलयुग में सही ज्ञान नहीं था, पर देखो पवित्र बनने की लगन तो थी, कितनी कठिन तपस्याएं की, कितना हठ दमन किया, हमें तो बाबा ने सहज योग सिखाए। साइलेंस में बैठकर जो आपके अंदर कड़ा विकार संस्कार रहो, ज्ञान के हिसाब से जानते हैं कि अब मैं मेरे में नहीं होना चाहिए, पर है अभी भी कड़े संस्कार हैं जिनके वश होते रहते हैं, ये विकर्मों के हिसाब की निशानी। घर में गंदगी है, बदबू फैलेगी, जम्स फैलेंगे, मन में तूफान क्यों आते, विकारी विचार क्यों आते, संस्कार में गंदगी है। तो हरेक खुद अपने आप को देखें, कौन सा कड़ा संस्कार है, किसी में क्रोध, किसी में काम, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, खुद को चेक करो, फिर उसके सामने कौन सा गुण धारण कर। क्रोध के संस्कार हैं, शांति और प्रेम के गुण धारण करते हैं। खुद को पक्का कराओ, अपवित्रता काम वासना के संस्कार हैं, मैं शुद्ध सत्य पवित्र आत्मा, खुद आपको चेक करना है, बार 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 जो विकर्म होते हैं वो विकारी संस्कार बनते, अब बार 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 जितने ज्ञान स्वरूप गुण स्वरूप बन के कर्म करेंगे तो शुद्ध संस्कार बने। मैं ही गुणों का स्वरूप हूं ना, ओरिजिनली अपने मूल सात गुणों का स्वरूप मुझे बनना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, मेरी ओरिजिनालिटी ये है, ये स्वीकार हो जाए। तब हम सत्य कर्म करने में अपना अटेंशन दे सके, अभी तो छोटे मोटे विकर्मों के हिसाब अभी भी बन रहे, कोई किसी से मुंह बिगाड़ता, नाक चढ़ाता है, आंखें दिखाता है, तेरी मेरी निंदा करता है, ये विकर्म बन रहे हैं, पर चिंतन करते हैं। जितना बाबा कहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो अवज्ञा हुई। इसलिए कर्म की ये गति का ज्ञान अटेंशन में रहे। कहीं बाबा पर नाराज हो जाते, मैं बाबा की बनी तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारा किया हुआ हिसाब कहां जाएगा। हम बाबा के बने हैं, कितना अटेंशन में रहते हैं, खुद खुद को देखो। जो हमारा हिसाब किताब विकर्मों का बना है तो वो तो हमें चुकाना है ना, कोई हम बाबा के बने तो हमने कोई बाबा पर उपकार थोड़ी कर दिया। बाबा हमें जगाता है, समझाता है, सावधान करता है। कुछ भी परिस्थिति आती है ना, तो ये गति क्यों बुद्धि में रखनी है, ताकि कोई बात आती है हमें अपसेट नहीं होना है। हमें ज्ञानी योगी आत्मा बन के पार कर, और ये संगम का समय है सत्कर्मों को जमा करने का। बाबा कहते हैं ना, जमा का बैंक अभी ही खुलता है, सारा चक्र तो खर्च होगा। जिस क्षण सृष्टि पर आए खर्च होता जाएगा ना, सतयुग में तो कोई कमाई है नहीं, संगम की कमाई हुई जो है हमारी जमा, वो हम खर्च करेंगे। इसलिए वहां कर्म का कोई हिसाब नहीं बनता है, न जमा न माइनस। वहां अज्ञानता, विकार, माया है ही नहीं, तो विकर्म होने की बात ही नहीं। पर हम अच्छे कर्म भी जो करेंगे वो पूर्व के संगम युग की हुई कमाई का है। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म अकर्म, न्यूट्रल कर्म, न्यूट्रल कर्म जिसका कोई हिसाब नहीं बनता है, न जमा न माइनस। जो सारी फिलोसॉफी समझनी है वो संगम पर। द्वापर में भी कोई ज्ञान नहीं था तभी तो पाप हुए। तो पूरी अवेयरनेस चाहिए अभी संगम युग। हम सेवा कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म भी अभी ही होते हैं। बाबा कहते हैं ना, द्वापर में तो बलिदान करते हैं, परंतु वो भी पापात्माओं का पापात्मा से हिस्सा बनता है। अच्छे कर्म कहेंगे, सत्कर्म तो संगम युग में होते हैं। आत्मा की सत्य स्थिति में स्थित होकर बाबा के श्रीमत पर जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म है। इसलिए बाबा ने आज भी याद कराया, तुम अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में उपस्थित हो, बाप के मददगार। ये मौका है तन मन धन मन वचन कर्म गुण कला विशेषता समय संबंध संपर्क सब कुछ सफल करने का। पर सफल करना और जमा होना दोनों की फिलॉसफी अलग अलग है। सफल किया पर मैंपन आया, सबके आगे वर्णन करते रहे, कर्तापन का भान आया, करने का फल खाना चाहा, मान मिले शान मिले महिमा मिले, वो इतना परसेंट माइनस, वो माइनस हो जाता। इसलिए किए हुए सेवा सहयोग सत्कर्म पूरा जमा करना हम चाहते हैं कि मुझे बाबा अभी इसका फल नहीं चाहिए, मुझे 21 जन्म मल्टीप्लाई करके आप देना। तो हमें हर सत्कर्म सेवा कर्म निमित्त भाव से करना है। ये बाबा ने सिखाया है, निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल स्वभाव वाणी। तो जमा होते हैं, बाबा हमसे लेता नहीं है, हम खुद के लिए ही सफल करते हैं। इसलिए बाबा से लिया कितना, सफल किया हमने कितना, हिसाब हमें देख। भगवान का काम है बता देना, राज बताना। सावधान रहकर उस अनुसार चलना हमारा काम है। ये कर्म गति हर भारतवासी जानता है, बाबा उसके राज खोलते हैं ज्यादा। बाकी तो सब जानते हैं, जैसा करेंगे ऐसा पाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। हिसाब क्लियर है, भगवान बीच में नहीं आता। भगवान तो सत्कर्म कैसे करे वो ज्ञान देता है, विकर्म भस्म कैसे करे वो विधि बताता है। करना किसको है? हमें। इसलिए खुद के लिए जिम्मेवार बनके उधार खाता विकर्मों का खत्म करना है और 21 जन्मों के लिए सत्कर्मों का खाता जमा करना। ये ओपन पॉलिसी है बाबा की, कुछ भी बाबा छिपाते नहीं। एक अच्छे कर्म का पदम गुणा चाहिए 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 ना हमें, तो वो करने का भी टाइम है। और अगर गफलत से भूल की पाप किए तो एक का 100 गुना दंड भी है। इसलिए मुझे ज्ञान स्वरूप बनकर, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने। ओम शांति।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो।
बहुत ही सुंदर रीति से कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को आपने समझा। दीदी को एक हाथ हिलाकर शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।